वतन का राग। भगत सिंह के बारे में कुछ सुनी अनसुनी बातें सुनिए वरिष्ठ रंग कर्मी दिनेश दीक्षित के साथ। भाग दो। प्रस्तुति अर्पा कम्युनिटी रेडियो 90.8 FM।
आजादी के आंदोलन में उतरते समय भगत सिंह ने 1923 में घर को अलविदा कहते हुए अपने पिताजी को पत्र लिखा। पिताजी, मेरी जिंदगी आज़ाद हिंद के उसूल के लिए तय हो चुकी है, इसलिए मेरी जिंदगी में आराम और दुनियादारी की कोई कशिश अब बाकी नहीं रह गई है। मैं आज़ादी के लिए सब कुछ कुर्बान कर देना चाहता हूँ। भगत सिंह स्वामी राम तीर्थ की पंक्तियाँ अक्सर गुनगुनाया करते थे। हम रूखे टुकड़े खाएंगे, भारत पर वारे जाएंगे, हम सूखे चने चबाएंगे, भारत की बात बनाएंगे, हम नंगे उम्र बिताएंगे, भारत पर जान मिटाएंगे। लाला लाजपत राय कांग्रेस में गरम दल के प्रमुख नेता माने जाते थे। भगत सिंह और उनके विचारों में भिन्नताएं थी। साइमन गोबेक का नारा लाला जी का था। बावजूद विचारों की भिन्नता के भगत सिंह ने अपने साथियों को समझाया कि ये अपना भी मुद्दा है, हमें इस विरोध का पुरजोर समर्थन करना चाहिए। दुश्मन का दुश्मन हमारा दोस्त, हमें इस विरोध को मजबूत बनाना ही होगा। हिंदुस्तानी हैं हम, हिंदुस्तान हमारा, मुड़ जाओ साइमन, जहां है देश तुम्हारा। साइमन कमीशन के लाहौर पहुंचने के दिन 30 अक्टूबर 1928 को भगत सिंह ने लाला लाजपत राय का साथ देने का फैसला कर लिया था। कमीशन के सदस्यों ने भीड़ से आगे निकलने की कोशिश की तो भीड़ ने एक दीवार बनकर उनका रास्ता रोक लिया। पुलिस का भारी जमावड़ा लोगों को पीछे ढकेलने की कोशिश करने लगा, लेकिन लोग टस से मस होने को तैयार नहीं थे। पुलिस सुपरिटेंडेंट जे ए स्कॉट ने लाठीचार्ज का हुक्म दिया। भीड़ में अफरातफरी मच गई। कुछ लोग धक्का मुक्की से जमीन पर गिर पड़े, कुछ ने गिरफ्तारियां दी। तभी स्कॉट ने दूर से ही लाला जी को पहचान लिया और उनकी तरफ झपटा। उसने अपनी लाठी से लाला जी को बुरी तरह पीटा और तब तक नहीं रुका जब तक लाला जी लहूलुहान होकर जमीन पर नहीं गिर पड़े। मानो वो उन सबको एक सबक सिखा देना चाहता था कि ब्रिटिश हुकूमत को ललकारने वालों का क्या हाल होता है। बुरी तरह घायल हुए लाला लाजपत राय ने कहा, आज मेरे ऊपर बरसी हर एक लाठी की चोट अंग्रेजों के ताबूत की कील बनेगी। लाला जी ने कुछ दिनों बाद अस्पताल में दम तोड़ दिया। इसके बाद ही भगत सिंह ने कहा, हम इसका बदला जरूर लेंगे। चूंकि लाला जी जेम्स स्कॉट की लाठी से घायल हुए थे, इसलिए मीटिंग में यह प्रस्ताव पारित करवाया कि हम लाला जी के खून का बदला स्कॉट के खून से लेंगे, ताकि ब्रिटिश हुकूमत को ये सनद रहे कि हम कमज़ोर नहीं हैं। सिर्फ 9 साल पहले ही यहीं भारत में पैदा हुए एक आयरिश ब्रिटिश अधिकारी ब्रिगेडियर रिजिनाल्ड डायर ने अमृतसर के लोगों पर इसी तरह अपना गुस्सा निकाला था, सिर्फ इसलिए कि कुछ देशी लड़के बाजार में एक अंग्रेज औरत को चिढ़ाने का दुस्साहस कर बैठे थे। डायर ने अपना बदला लेने के लिए 13 अप्रैल 1919 वैशाखी का दिन चुना। हाँ, वैशाखी, जिस दिन फसल कटकर पंजाब में खलिहानों में आती है, और वो दिन खुशियां मनाने का दिन होता है। उस दिन स्वर्ण मंदिर से कुछ दूरी पर स्थित जलियांवाला बाग में लगभग 20,000 लोगों की भीड़ रोल एक्ट के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के लिए इकट्ठी हुई थी। डायर ने पुलिस को शिकारी कुत्तों की तरह भीड़ पर छोड़ दिया, और तो और उस अधम नीच ने उस मैदान से निकलने का इकलौता रास्ता भी बंद करवा दिया, ताकि कोई भी पुलिस की गोली से बचकर जाने न पाए। पुरुष, स्त्रियां और बच्चे आग उगलती मशीन गनों के सामने ढेर होते चले गए। पूरे 1650 राउंड गोलियां चलाई गई। बहुत से लोग गोलियों से बचने के लिए बाग के इकलौते कुएं में कूद गए जो इस नरसंहार का मूक गवाह था। भगत सिंह तब सिर्फ 12 साल के थे, लेकिन इस घटना ने उन्हें बुरी तरह हिला दिया था। अगले दिन वो स्कूल से सीधे जलियांवाला बाग गए। संतरियों की नज़र से बचकर उन्होंने मैदान से मिट्टी इकट्ठी की, देश के लोगों के लहू से सनी मिट्टी। घर लाकर उसे एक तांबे के पात्र में रखा और रोज़ उस पर फूल चढ़ाने लगे। कभी वो दिन भी आएगा कि जब आज़ाद हम होंगे, ये अपनी ही जमी होगी, ये अपना आसमां होगा, शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मरने वालों का यही बाकी निशान होगा।
वतन का राग, भगत सिंह के बारे में कुछ सुनी अनसुनी बातें। प्रस्तुति अर्पा कम्युनिटी रेडियो 90.8 FM।